أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صلواتك اللهم صل على آپ حضرات کی حسن سماعت کے سہارے سے جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی کہ اصول دین کو سمجھا جائے امام علی علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں، تو آج اس سلسلے کی آخری تقریر ہے کہ انشاءاللہ جس حد تک ہمارے بس میں ہیں جو معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیں اس کو ایک جگہ پر ایک مقام تک پہنچا کے کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ، کہ تاکہ ایک نتیجہ آپ کے پاس آ جائے. اور جیسا کہ پچھلی چار تقاریر کے حوالے سے آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے اندازہ ہو گئی ہوگی کہ جو کچھ بھی ہم نے بات کی ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ٹریڈیشنل اور کنونشنل وزڈم کے پیرائے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ان مقامات سے یا ان درجات سے بلند ہونا پڑے گا. اور یہ بلندی کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ اس بلندی کی دعوت قرآن اور اہل بیت کے کلمات میں اور آثار میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے. اور حیرانی ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک سمجھتے ہیں لیکن ایک نچلے معیار پر قناعت کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اہل بیت اور قرآن خود ہمارا معیار بلند کرتے ہیں اور ہمیں یعنی ہماری فکر کو، ہماری فکری سطح کو ان مقامات تک، یعنی کہ چاہے آپ اس کو حکمت کے حوالے سے دیکھیں، علم کے حوالے سے دیکھیں، تحقیق اور تجزیے کے طور پر چیزوں پر نظر کریں، ہر اعتبار سے ہمارا معیار بحمدللہ قرآن اور اہل بیت کی برکت سے بلند ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی تھی اس کا سب سے اہم جو نچوڑ ہے یا لب لباب ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ دین پر نظر کریں تو دین کو ہمیشہ ایک اکائی اور سنگل ریالٹی کے طور پر، حقیقت واحد کے طور پر اس پر غور فرمائیے یا اس کو لینے کی کوشش کریں. جیسا کہ ہم خالی آنکھ کو یا کان کو یا زبان کو اسٹڈی کر کے انسان کو نہیں سمجھ سکتے الگ الگ، اسی طریقے سے ہم دین کو مختلف حصوں میں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں جناب یہ عبادات ہیں اور یہ معاملات ہیں، یہ فروعات ہیں، یہ اصول ہیں، اس تقسیم بندی کے ذریعے سے دین کو، دین کی حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا. اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، کہ جب ہم دین کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ یہ اصول ہیں اور یہ فروعات ہیں، تو کیا ہمارے ذہنوں میں یا خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کنیکشن بنتا ہے کہ اصول اور دین جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یا جو بھی اصول اور فروع یا جو فروعات ہیں وہ حقیقتاً اصول کی بنیاد پر کھڑی ہیں؟ نہیں. آپ اس بات کو کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کے لیے فروعات یعنی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ الگ معاملہ ہے، اور جو اصول ہیں یعنی توحید و نبوت اور قیامت وہ الگ معاملات ہیں. وہ نظریاتی پہلو ہے دین کا، یہ عملی پہلو ہے، اور دونوں الگ الگ ہیں. ہم اس بات کو بھی بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں وہ انہی اصول کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ دیکھیں جو بھی ہم دین کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں یا جس ایکٹیویٹی میں بھی انوالو ہوتے ہیں، اگر وہ ایکٹیویٹی ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمیں کوئی ویلیو ایڈیشن کا سبب نہیں بن رہی ہے، ہمیں بہتر نہیں بنا پا رہی ہے اجتماعی اور انفرادی لحاظ سے، تو پھر وہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں وہ کام؟ اتنے وقت اور پیسے کی انویسٹمنٹ کا آپ کو کیا ریٹرن ہے، کیا فائدہ ہے؟ یہ سب باتیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا اور سوچنا ضروری ہے کہ یہ سارے کا سارا کام ہم یوں ہی کیے چلے جا رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے نہ ہمارے اندر کوئی امپروومنٹ آ رہی ہے، نہ ہماری کوالٹی بہتر ہو رہی ہے، نہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آ پا رہی ہے. تو یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں، یہ بھی یعنی کہ جب بھی ہم مجلس کے عنوان سے یا درس کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو میں نے اصول کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے بتایا تھا کہ دین حقیقتاً ایک کمپلیکس کی تعمیر ہے، اور اس کے لیے جو فاؤنڈیشن آپ لے ڈاؤن کرتے ہیں وہ آپ کے اصول دین ہیں، اور آپ کی عمارت جو آپ کے ایمان اور عمل صالح اور معرفت ان سب چیزوں سے مل کر بن رہی ہوتی ہے، وہ ان فاؤنڈیشنز اور ان اصولوں پر ہی کھڑی ہوتی ہے. پہلا اصول ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان کی، بندے کی اپنے نفس کی معرفت، کیونکہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جو اپنی قدر و قیمت سے غافل ہے، جو اپنی ابتدا اور انتہا کا کوئی شعور نہیں رکھتا ہے، وہ حقیقتاً کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. وہ حقیقتاً اپنی لائف کو لہو و لعب میں برباد کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی بہت زیادہ دقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گرد جا بجا یہ مناظر ہم کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنی فکر کو ایک درجہ اور آگے بڑھایا کہ جب ہم اپنی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی ہماری بنیاد کی پہلی لیئر قائم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد ہمیں نفس کی معرفت، الہ کی، معبود کی، خالق و رازق اور الٹیمیٹ ریالٹی کی معرفت کی طرف، اور اس کی جستجو، صرف معرفت نہیں بلکہ اس کی جستجو، اس کو پا لینے کی طرف آمادہ کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، راغب کرتی ہے اور حرکت ملاتی ہے، معرفت نفس. اور اس حوالے سے پھر ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے توحید الہ سے، کیونکہ جو الہ ہے، جو خدا ہے، جو یعنی کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی رزق دینے والا ہے، جو حی ہے وہی قیوم ہے. یہ معرفت توحید کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم نکات ہیں کہ جس کی طرف میں نے کچھ آپ کے سامنے اشارے کیے. और कल की गुफ्तगू में जो जहां पर हमने बात को रोका था वो ये था कि खुदा की मारिफत दोबारा हमें अपने आप की जानिब मुतवज्जे होने पर आमादा कराती है, यानी हम अपने नफ्स को मारिफत खुदा की रोशनी में अज़सरे नौ एक नई हकीकत के तौर पर देखना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे लिए नए मामलात, नए मसाइल, नए सवालात, नई राहें, नई मंजिलें हमारे लिए खुलती हैं, वो दर खुलते हैं, वो सब कुछ वजूद में आता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले और ये कि जो उसूल दीन है उसकी तीसरी असल के जहां पर बात एक लिहाज से मुकम्मल हो जाती है उसका तस्करा करने से पहले मैं एक दो चीजें ऐसी हैं जो तंबीहात कह लें या वार्निंग्स कह लें कि उसका जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि क्योंकि तौहीद के जो मामलात हैं वो हम बार बार आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि इसमें बारीकी और नजाकत बहुत ज्यादा है और ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें लغزش और गहरी खाइयों में गिरने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा होते हैं और लोग करते हैं बहुत ज्यादा इसमें लغزش करते हैं और उनके कदम बहकते हैं। तो इस बारे में बहुत खबरदार रहें, इस बारे में जैसा मैंने कल इमाम अली अलैहिस्सलाम का खुतबा भी आपको पढ़ के सुनाया था कि अपनी तरफ से राय जनी करने से बहुत ज्यादा गुरेज करें। कुरान में जो तौहीद बयान हुई है, कलाम मासूमीन में जिस तरीके से तौहीद को उजागर किया गया है उसको समझने पर पहली मंजिल पर बहुत ज्यादा दिक्कत करें, बजाय इसके कि किसी फलसफी की बात पढ़ लें या किसी इधर उधर की किसी नजरिए को पढ़ के सुन के कोई दिमाग में ख्यालात पलना शुरू हो जाए। इन तमाम बातों से मैं आपको वार्न करता हूं कि ये काम ना कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरात हैं। ठीक है, दूसरी बात यह भी है कि जो कुछ हमने भी बयान किया, जैसे कि मुझे याद आता है कि जो सबसे पहला नजरिया तौहीद का मैंने बयान किया था कि खुदा अल्टीमेट रियलिटी है ना कि चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की फाइनल कॉज, ये बहुत बहुत दकीक बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत तलब है। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये समझ में आया है नहीं आया है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर सवाल करें क्योंकि हमारे जितनी भी तकारीर होती हैं, मजालिस होती हैं, उसमें ये बड़ा एक नक्स पाया जाता है कि बोलने वाला अपनी मर्जी से बोलता चला जाता है, सुनने वाले अपनी समझ के मुताबिक सुन समझ के अपने घर चले जाते हैं और बात पता नहीं क्या की क्या हो जाती है और सवाल नहीं होते, यानी कि जो जिसने कहा है लोग आगे बढ़ के उससे पूछते नहीं है कि आपने ये बात कैसे कही, क्यों कही, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, या हम समझ नहीं पा रहे, हमको समझाएं, ये हमारा दस्तूरी नहीं है हमारी मजालिस का और हमारे जो फोरम है आज़ादारी के हवाले से जो हम खास तौर से मजालिस बर्पा कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें या तो ये कि कोई नजरिया बनाने से परहेज करें और अगर कोई नजरिया बना रहे हैं या कोई चीज समझना चाह रहे हैं नहीं समझ में आ रही तो सवाल जरूर करें, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से एहसास है कि शुरू में मैंने जो दो तीन पॉइंट्स हाईलाइट किए थे जुमे के दिन अपनी तकरीर के, वो आसान नहीं है, बहुत दकीक है, उन तक पहुंचना, उनकी गहराई को पाना, उनको असल उसके स्कोप को ग्रेस्प करना इजी नहीं है। तो ये एक बात थी कि इसमें बराए मेहरबानी काफी एहतियात फरमाइएगा, ये मामलात खतरनाक हो सकते हैं। और इसमें जो एक खतरनाक पहलू और आता है वो ये बन जाता है कि लोग फिर चीजों को आगे कोट करना शुरू हो जाते हैं कि फलां साहब ने ये बात यूं कही थी और फिर वो बात बिल्कुल किसी और सेंस में बाज़ोकात कन्वे होती है, फिर जो सुनने वाला है वो कहते हैं अच्छा वो तो बिल्कुल ही गुमराह थे जो आपको ये सब बातें बता रहे थे, और इसमें असल नुकसान आपका होगा कि मुख्तलिफ किस्म के इधर उधर की चीजों के दरमियान आपका जहन एक अजीब स्क्वीजिंग सिचुएशन में आता चला जाएगा। तो ये एक वार्निंग थी इन तमाम इस तमाम गुफ्तगू के हवाले से कि जो आपको जिसका ध्यान और लिहाज रखना जरूरी है। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि हमने पहली असल मारिफत नफ्स के हवाले से उस जगह पर आए, फिर मारिफत नफ्स का से इस्तेफादा करते हुए हम तौहीद तक गए, और तौहीद के नतीजे में जब हमने अपनी जात का दोबारा से जायजा लेना शुरू किया और अपने आप को तौहीद और इलाह के तनाजुर में देखना शुरू किया। अब ये जुमला भी जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा गौर तलब है कि हम अपनी जिंदगी को अपने हाजात, सवालात और ख्वाहिशात के तनाजुर में देखते हैं, ये एक व्यू बनता है। यानी मैं मिसाल के तौर पर मैं एक जिस्म हूं, मेरी ख्वाहिशात हैं, मेरी शहवात हैं, मुझे अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए फला फला चीजें दरकार हैं, मुझे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इन इन चीजों से बचना जरूरी है, ये मेरे लिए नुकसानदेह है, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए, मिसाल के तौर पर अगर हम शरीयत की जबान इस्तेमाल करें, हलाल है और ये हराम है, और ये मेरे लिए वाजिब है और ये नाजायज है, ये तमाम की तमाम बातें आप अपने आप को देख रहे हैं अपने लेंस से। यानी आपका जो वेंटेज पॉइंट है, आपका जो जिस डायमेंशन से आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उसका सेंटर और फोकस खुद आपके अपने अंदर है, आपकी अपनी जात और आपकी हाजतों में वो चीज उसका पाया वहां पर है। लेकिन दीन और कुरान और अहले बैत और इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियात हमको एक और व्यू पॉइंट देती हैं और उसकी तरफ मुतवज्जे करा रही होती हैं, और वो व्यू पॉइंट ये होता है कि खुदा के तनाजुर में, खुदा की तरफ से, खुदा का बंदा होने की हैसियत से अपना जायजा लो। यहां अगर आप इस जगह पर आ जाएंगे तो आपकी नजर, आपकी जाविये फिक्र खुद अपने बारे में बदल जाएगी और तब्दील हो जाएगी, आप खुद अपने आप को एक और शख्सियत के हवाले से देखना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत अहम बात है, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। तो जब हम तौहीद की मारिफत हकीकतन हासिल करते हैं और उस राह पर चलना शुरू होते हैं तो हम खुद अपने बारे में एक नई नजर डेवलप कर लेते हैं, और वो जो नजर ताजा है वो यहां से इस तरफ से नहीं, अपने आप अपने लेंस से अपने आप को देखने की बात नहीं हो रही होती है, बल्कि खुदाई तनाजुर में, खुदाई लेंस से अपनी जात को, यानी खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया। अब इस जैल में सवालात उठते हैं, मसाइल बरामद होते हैं। मैं जैसे मिसाल के तौर पर कुछ सवालात अगर उठाऊं, किस तरीके से कि मैं, मुझे इलाह का शऊर तो हासिल हो रहा है, यानी मुझे ये बात पता चल रही है कि मेरा कोई पैदा करने वाला है, मेरा कोई माबूद है, यानी मेरी असल, मेरी हकीकत किसी से वाबस्ता है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मैं उससे कनेक्ट भी हो सकता हूँ। उसने खुद जब पैगंबरान को भेजा, उसने जब किताबों को नाजिल किया, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे पैगाम दे रहा है कि मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं तुमसे राबता करना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं, मुख्तलिफ चीजें आती हैं कि सबसे पहली बात यह है कि जो मेरा राबता अगर हो सकता है, वो राबता कितना जिंदा राबता है। कितना जिंदा का मतलब है कि वो एक्टिव लाइव लिंक है या खाली पैगाम रसानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस फर्क को आप समझेंगे कि लाइव लिंक का मतलब ये होता है कि एक कम्युनिकेशन चैनल जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है, ये लाइव है, या ये कि कभी कुछ पैगामात कहीं से आ जाते हैं या कुछ बात हो जाती है बस ऐसा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसमें जो मेरा उससे अगर लिंक बनता भी है उसमें ऑथेंटिक कितना है, यानी उसमें वसूक कितना है, उसमें एतमाद कितना है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। जो लिंक है वो आरजी है, मुस्तकिल है, पर्सनल है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि जैसे हम अपने इर्द गिर्द कायनात को देख रहे हैं, कायनात में दसियों बल्कि सैकड़ों हजारों मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और हम इस बात को समझते हैं कि तमाम की तमाम मखलूकात क्या है, खुदा की तजल्ली है, खुदा की सिफात को एक्सप्रेस करती हैं इन वन वे और द अदर। तो क्या बस यही हमारा खुदा से ताल्लुक है कि एक बीच में मीडियम है मखलूकात का, कि जो हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के जुमले से क्या ये मतलब लें कि जो अल्हम्दुलिल्लाहिल्मुतजल्लालिखल्क़िही बेखल्क़िही, क्या उसका मतलब ये लें कि बस खुदा इसी तरीके से हमसे राबता करता है कायनात के जरिए से, या ये राबता पर्सनल भी है और इंडिविजुअल भी है। अब आप देखें कि ये जब मैं अपने आप को खुदा के तनाजुर में देखना शुरू कर रहा हूं, जब मैंने अपनी दूसरी असल अपनी बुनियाद में रखी, तो अब कितनी नई बातें पैदा हो रही हैं, कितने नए मामलात मेरे सामने आ रहे हैं जो कि उस वक्त मेरे लिए बिल्कुल सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जब मैं अपनी जात को अपने तनाजुर में देख रहा था, अपने जिस्म और अपनी ख्वाहिशात और अपने मैलानात और रुझानात, ये सब बातें मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस थी, मेरे स्कोप में, मेरे विजन में, मेरी टेलीस्कोप में नहीं आ रही थी। अच्छा, अब इससे आगे एक और बहुत अहम बात है कि खुदा से जब हम ताल्लुक की बात करते हैं तो ये ताल्लुक कैसे कायम होता है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर मेरा और आपके एक राबिता इस वक्त है कि जिसमें हम एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं और तस्वीर देख सकते हैं, तो इस राबिते को कायम करने के लिए हमें कुछ करना पड़ा है ना, और हमने किसी के बनाए हुए एक पूरे नेटवर्क का सहारा लिया है कि अगर ये सैटेलाइट नेटवर्क ना होता, अगर किसी ने ये सारा सॉफ्टवेयर ना लिखा होता जिसको मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज हम ये बात नहीं कर सकते थे, हमारे दरमियान ये राबता नहीं कायम होता। तो खुदा के साथ जब हम राबता कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए वो नेटवर्क कहाँ से आता है, वो नेटवर्क कौन सा है, कैसा बनेगा। अच्छा, फिर खुदा के साथ राबता जो है उसके लिए हमें कोई काम भी करना पड़ेगा, वो काम कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, ये एक दफा करने के बाद ही खुदा से राबता कायम हो जाएगा जो हमेशा कायम रहेगा, ये तमाम के तमाम सवाल। एक और बहुत अहम बात जो हमारे सामने आती है कि खुदा से राबता कायम करना या खुदा से ताल्लुक पैदा करना, ये क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम ताल्लुक पैदा करते हैं तो हम अपनी मैं अपनी जगह बैठा हुआ हूं, आप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और हमारे दरमियान एक ताल्लुक है जो आवाज और तस्वीर की बिना पर है, खुदा से ताल्लुक का क्या मतलब है? कि हम खुदा की तरफ बढ़ेंगे, कोई रास्ता तय करेंगे, कुछ मराहिल को अबूर करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या खुद हम में कोई तब्दीली आएगी कि जिसकी वजह से हम खुदा से करीब हो जाएंगे, या खुदा अपने मंजिलत से नीचे आएगा और उस वक्त हम खुदा से करीब हो जाएंगे। अब ये एक आप अगर इसको अप्रिशिएट कर रहे हो कि जो मैंने ये सारा सिनेरियो आपके सामने डेवलप किया कि ये होल न्यू वर्ल्ड इज ओपनिंग बिफोर अस, और ये जो एक नया आलम हमारे लिए उजागर और रोशन हो रहा है, ये किस बिना पर हो रहा है? ये तौहीद और इलाह की मारिफत की बिना पर हो रहा है। यानी कि जब मैं इस बात को रियलाइज कर रहा हूं कि मेरी असल हकीकत अल्लाह है, और मेरा कमाल ये है कि मैं अपनी हकीकत से राबता और कनेक्शन डेवलप करूं और मेंटेन रखूं, तो अब उसमें ये सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि यानी कि वो ये जो राबता है क्या मेरी मर्जी से कायम होता है, उसकी मर्जी से कायम होता है, कैसे रहेगा, ये तमाम चीज। अच्छा, अब इस मसले को कैसे हल किया जाए? ये मसला उस वक्त और ज्यादा पेचीदा हो जाता है कि जब हम जैसे इंसान इस बात को समझते या एहसास कर रहे होते हैं कि हमारा खुदा के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, और इस बात को हमें मानना चाहिए कि ये यानी कि हम कुछ भी कहें लेकिन हम जैसे इंसान कि जिस तरीके से कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ या दूसरे लोगों से, अपने घर वालों के साथ रह रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों के साथ एक जिंदगी बसर करता हूँ, इस तरीके से हमारे पास खुदा के हवाले से कोई सेंस नहीं होता अब शुरू में। और जो सच्ची बात है वो यही है कि इसी वजह से बहुत सारे मुसलमान और ईमान का दावा करने वाले भी तौहीद के हवाले से कमजोर होते हैं। वो शऊर इलाह और उस पर तवक्कुल और एतमाद और शिर्क भी इसी वजह से पैदा होता है कि हमें खुदा नहीं दिख रहा होता, तो हम मुख्तलिफ किस्म के लोग जहां जहां पर हमें कुव्वत और ताकत और रियासत नजर आती है हम उस पर एतमाद करना शुरू हो जाते हैं। तो अब इन तमाम मसाइल का क्या हल हो, इन तमाम सवालात का जवाब कहां से आएगा? अब इसको देखें कि हम अपने इलाह का शऊर भी हासिल कर रहे हैं, हम उसका इदराक और एहसास भी कर रहे हैं, लेकिन ये लाइव लिंक कैसे बनाऊं, ये राबता कैसे बनाऊं, उसके साथ ताल्लुक कैसे पैदा करूं, कैसे इस बात को समझूं कि वो क्या चाहता है, वो कब मुझे कबूल करेगा, कब मुझसे राजी होता है, कब मुझसे नाराज होता है, ये सब बातें कहां से पता चलेंगी? अब मेरा फोकस तौहीद पर है, इस बात को बहुत अहमियत रखिएगा, मेरा फोकस तौहीद पर है, लेकिन तौहीद के हवाले से ये सवालात और मसाइल जन्म ले रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हल क्या है? सोल्यूशन तो खुदा की तरफ से ही आया है, सोल्यूशन हमने नहीं बनाया है, इस मसले का सोल्यूशन अल्लाह की तरफ से ही आया है, क्योंकि वही हमारे तमाम मसाइल को हमसे बेहतर जानता भी है और वही हमारे तमाम मसाइल का बेहतरीन हल भी अपने पास रखता है और अता करता है। वो हल क्या है कि एक ऐसी हस्ती हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, एक ऐसा वजूद हो जो बयक वक्त खुदा से और हमसे दोनों से कनेक्टेड हो, खुदा से भी कनेक्टेड हो और हमसे भी कनेक्टेड हो। क्यों? हमें ये नहीं कि वो हस्ती कैसे मेरी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, इसलिए कि मेरे और खुदा के दरमियान जो मुझे गैप नजर आ रहा है कि जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, जो एक खुदा और शऊर है, एहसास है, इदराक है, बहुत सारी जगहों पर मैं समझ भी पा रहा हूं, महसूस भी कर पा रहा हूं, लेकिन असल क्या है, तो उस गैप को वो हस्ती फिल करती है कि जो एक एंड से मुतालिक ब खुदा है, एक एंड से मुतालिक ब इंसान है। वो बैक वक्त अल्लाह और हमारे दोनों के तकाजे पूरी करती है। अब ये जुमला बहुत गौर से सुनिएगा, ये मैंने क्या कहा कि बैक वक्त अल्लाह और हमारे दोनों तकाजे पूरी करती है, यानी जिस एंड से वो खुदा से मुंसलिक और मुतालिक है, वहां वो खुदा के लिए काबिल कबूल और महबूब है कि खुदा उसे वो दे जो देना चाहता है, और जिस एंड से वो इंसानों के साथ मरबूत और मुंसलिक हैं, वहां पर वो हमारे लिए काबिल वसूक और काबिल एतमाद हैं कि जो कुछ वो वहां से लेकर हमारे हाथ में दें तो हमें एतमाद हो कि ये खुदा की तरफ से ही आ रहा है, ये सेल्फ फैब्रिकेटेड नहीं है, इसमें धोखा नहीं है, इसमें फरेब नहीं है। ये जो हस्ती और ये जो लिंक खुदा ने बनाया है अपने और हमारे दरमियान, इस लिंक का नाम है विलायत। और ये तीसरी असल है, ये असल सुव्वम है। और यहां पर आकर उसूल दीन मुकम्मल हो जाते हैं, यानी वो उसूल दीन के जो उस तनाजुर में जो मैंने आपके सामने, आप कहें दी आखिरत की बात नहीं, वो नहीं, वो अलग मामलात हैं कि वो जो एकेडमिक गुफ्तगू है वो अलग है। लेकिन मैं आपके सामने जो गुफ्तगू करना चाह रहा हूं वो इस एतबार से कि जो हकीकत से ज्यादा नजदीक है, यानी कि जिसको आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये वो नजरियात हैं कि जिनको आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस पर अपनी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो ये तीसरी असल जो है, जो लिंक है बैनल अब्द वल माबूद, बैनल इंसान वल इलाह, इस लिंक का नाम विलायत है। और ये विलायत की जिम्मेदारी क्या है? विलायत की जिम्मेदारी ये है कि खुदा से हासिल करे और इंसान तक पहुंचाए। और इंसान तक पहुंचाए क्यों? क्यों? इसलिए कि वही खुतबा अव्वल याद कीजिए, ताकि लोग अपनी फितरत के अंदर जो मीसाक इलाही है उसको निकालने के काबिल हों, और उनकी अकलों में खुदा ने जो हिकमत के और उलूम के खजाने दफन किए हुए हैं उनको डिग आउट करके और उनसे इस्तेफादा करने की सलाहियत पैदा कर लें, और फिर खुद उस राह को तय करें जो राह विलायत है, फिर खुद उस राह को तय करने के काबिल हो। यानी ऐसा थोड़ी है कि विलायत का मतलब यह है कि तुम सारी जिंदगी नीचे बैठे रहो, और नहीं, विलायत को इसीलिए आप देखें कि विलायत को कुरान ने हबलुल्लाह कहा है। ये बड़ी अजीब इस्तेला है, हबल की, रस्सी की, हबलुल्लाह, और हबलुल्लाह यानी अल्लाह की रस्सी। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की रस्सी है तो इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, और ये हबलुल्लाह के बारे में हमसे कहा जा रहा है वअतसिमू बिहबलिल्लाह। जब हमसे कहा जा रहा है कि इसको थाम लो तो लाजमन इसका एक सिरा हमारे हाथ में। जो हबलुल्लाह है कि अगर हबल रस्सी है, अगर उसको निस्बत दी जाएगी अल्लाह से, तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज मेरी मिल्कियत है वो मेरे पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि अगर हबल को आप निस्बत देंगे खुदा से, अल्लाह से, तो यानी एक सिरा खुदा के हाथ में, एक सिरा लटका दिया गया है हमारे पास, और हमसे कहा गया है कि इसको थाम लो। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, सब के सब, और ये ऑफर हर एक के लिए, और सब के सब का मतलब यहाँ पे मोमिनीन है, यानी कुफार मुशरिकीन के लिए ये फैसिलिटी नहीं है हबलुल्लाह की, क्योंकि हबलुल्लाह से मुतमस्सिक और मुतसिम होने के लिए ईमान शर्त है। जो जैसे वही मैंने आपसे कहा कि ये तीसरा मरहला है असल का, ये पहला मरहला नहीं है कि जो तमाम इंसानों के लिए ओपन हो, कि जिसने मारिफत नफ्स हासिल की, जो अपने जिसने मारिफत नफ्स के बाद तौहीद तक गया, तौहीद की रोशनी में उसने अपनी जात की मारिफत दोबारा से हासिल की, उसके लिए ये फैसिलिटी मौजूद है, ये हबल। तो ये हबलुल्लाह, ये विलायत हबलुल्लाह, ठीक है। और विलायत इसको हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि विलायत का मतलब होता है तकर्रुब का जरिया, तकर्रुब पैदा करने वाली चीज, कुर्बत वाली चीज। तो ये विलायत इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि इंसान को अपने रब से, माबूद से, इलाह से तकर्रुब अता करेगी, और तकर्रुब अता करने का वसीला है। तो ये तीसरी असल है जो इन्हें, इसके बारे में फिर इस बात को जहन में रखिएगा कि ये जो हबल है, ये हबल हबलुल्लाह, एहतसाम, एक सिरा खुदा के पास, एक सिरा हमारे हाथ में, हमारे लिए ये दावत नामा कि इस सिरे को थाम लो, ये हबल तुम्हें खुद बुलंद करती चली जाएगी, तुम्हें सिर्फ इसको पकड़े रहना है। इस बात को भी जहन में रखिएगा कि ये नहीं है कि रस्सी पकड़ कर ऊपर चढ़ो, नहीं, खुदा ने ये नहीं कहा कि रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ो, बल्कि खुदा ने कहा है कि रस्सी को थाम लो मारिफत के साथ और मजबूती के साथ। अगर तुमने इसको थाम लिया तो ये रस्सी यानी ये राह विलायत तुम्हें खुद बखुद खुदा से करीब करती चली जाएगी। ये तुम्हें बताएंगे, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, युज़क्कीहिम, ये तुम्हारा तज़किया कर देंगे, ये तुम्हें किताब हिकमत का इल्म अता करेंगे, ये तुम्हें तुम्हारी अकलों में छुपे हुए खजाने निकालना सिखाएंगे। लेकिन इखलास के साथ और मारिफत के साथ और दयानत के साथ इससे तमस्सुक और एहतसाम लाजमी है। अब जैसे हम उसूल दीन की बात करते हैं, मैं यहां इंशाअल्लाह थोड़ा सा वाजे कर दूं कि जब हम उसूल दीन के हवाले से बात करते हैं तो जनाब हम कहीं भी उसमें विलायत का नाम नहीं लेते, बल्कि हम बात कर रहे होते हैं नबुव्वत और रिसालत। नबुव्वत और रिसालत तो एक ही चीज है, और उसके साथ इमामत। तो ये हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हम नबुव्वत और रिसालत और इमामत को साइडलाइन कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, या नहीं? इस बात को, इस जुमले को भी याद रखिएगा, और अच्छी बात है कि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, कि नबुव्वत और रिसालत और इमामत ये विलायत की मुख्तलिफ तजल्लियात हैं, तजल्ली हैं विलायत की, यानी विलायत अपने आप को मैनिफेस्ट करती है कभी नबुव्वत की शक्ल में, कभी रसालत की सूरत में, कभी इमामत के जरिए से। ये विलायत की तजल्लियात हैं नबुव्वत और रसालत और इमामत, ये अलग अलग चीजें नहीं है, यानी असल वही है कि एक राबिता हो इलाह और अब्द के दरमियान, वो राबिता विलायत है, और ये राबिता जो है वो बंदे को खुदा से कुर्ब अता करता है, बंदे को खुदा की राह पर लेकर चलने के लायक बनाता है, हमें इनेबल करता है कि हम खुदाई बने, रब्बानी बने, हमारे और खुदा के दरमियान हिजाबात कम से कम हो। ये इसके बीच में इस राबिते के या वसीले का मतलब ये नहीं है कि ये वसीला हर वक्त दरमियान में बैठा रहता है, बल्कि इस वसीले से आप जितना ज्यादा मुतमस्सिक होंगे, जितना ज्यादा इसको मजबूती से थामे रहेंगे, तो आपके और आपके रब और माबूद के दरमियान पर्दे उठते चले जाएंगे, हिजाबात खत्म होते चले जाएंगे। ये इस विलायत की जिम्मेदारी, और ये विलायत अपने आप को तीन सूरतों में जाहिर करती है, नबुव्वत में कभी नबुव्वत, कभी रसालत, कभी इमामत, और इसके भी तीनों के फर्क को हमने कई दफा अच्छे तरीके से बता दिया। अभी मैं उसको जिक्र करूंगा, बात थोड़ी ज्यादा फैल जाएगी तो फिर मुझे समेटना गुफ्तगू मुश्किल हो जाएगी। तो विलायत क्या है, अगर मैं विलायत को डिफाइन करूं और उसके एलैबोरेट कर दूं उसकी डेफिनेशन को, कि विलायत अल्लमा आदमल अस्माआ कुल्लहा की कामिल और ताम हालत का नाम है। ताम यानी तमाम, कंप्लीट। खुदा ने आदम को जब खल्क किया था तो आदम की खिलकत पर और आदम की खिलाफत पर मलाइका ने सवाल उठाया था, और मलाइका के सवाल के जवाब में जो तशफी बख्श दलील खुदा की तरफ से आई थी वो ये थी कि ये मखलूक जो है वो इल्म में असमाए कुल की सलाहियत रखती है। अस्मा एक कुल्लहा, यानी कायनात में, आलम खिलकत में जितनी भी खुदा की अस्माओं सिफात हैं उन सब के सब पर हावी होने की अहलियत किसके पास है? आदम के पास है। तो विलायत, जो विलायत हक्का है, विलायत क्योंकि बातिल भी होती है, विलायत हक्का जो हब्लुल्लाह है, वो इस इल्म में अस्माए कुल का कमाल भी है और तमामियत भी है। इसके बाद ये विलायत क्या है? ये वो शफाफ तरीन आईना है कि जिसमें अस्मा ओ सिफात इलाहिया इंतहाई आला पैमाने और मेयार पर रिफ्लेक्ट होती हैं। और इसी बिना पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला भी है जो बहुत बहुत खूबसूरत जुमला है कि जिसमें आप बयान फरमाते हैं कि खुदा की कोई आयत यानी निशानी मुझसे बुजुर्गतर नहीं है। और यहां जब इस किस्म के जुमले जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के होते हैं तो वहां पर पर्सनैलिटी मुराद नहीं होती है, यानी मुझसे बरतर खुदा की कोई आयत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि मुझ अली मुझ इस पर्सन से बेहतर, बल्कि ये जो विलायत है कि जिसका मैं नुमाइंदा हूं इससे बुजुर्गतर और बरतर खुदा की कोई आयत नहीं है। यानी खुदा की कोई आयत के इससे बुजुर्ग ना होने का मायना क्या है कि हमसे बेहतर तरीके से, हमसे बेहतर अंदाज से अस्मा ओ सिफात इलाहिया को कोई ना पेश कर सकता है, ना बयान कर सकता है, ना डिफाइन कर सकता है, ना उसका मुजाहिरा कर सकता है। ये विलायत, विलायत हक, वो शफाफ तरीन आईना है कि जिसमें अल्लाह की तमाम सिफात बदरजे आतम रिफ्लेक्ट होती हैं। ये वो हस्ती है जो खुदा की नजर में इल्म लदुन्नी और मेराज कुर्ब की मुस्तहिक है, विलायत हक। कि अगर खुदा किसी को बुलाए अपनी बारगाह में और इल्म बारगही अता करे, इल्म बारगही का मतलब क्या है कि खुदा की बारगाह में रहने की बिना पर जो हकीकतें रोशन होती हैं, खुदा की बारगाह में होने की बिना पर जो हकीकतें रोशन होती हैं नफ्स पर, उसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। इल्म लदुन्नी उसको नहीं कहते कि कोई आके लिखाए और पढ़ाए और सिखाए, कि एक हस्ती खुदा की बारगाह में हो, खुदा के महजर में हो, और उस महजरे खुदावंदी में मौजूद होने की बिना पर जो हकीकतें रोशन होती हैं उसका नाम है इल्मे लदुन्नी। ये वली मुतलक खुदा की बार नजर में इल्मे लदुन्नी का मुस्तहिक है। और मेराज कुर्बत, यानी कुर्बत की जो मेराज पॉसिबल है, एक मखलूक जितना करीब हो सकती है वो इस वलीज़म या विलायत हक्का की ये इस्तेहकाक, ये हैसियत है खुदा की नजर में। ये है वो रिश्ता, ये है वो लिंक के जो हमारे और खुदा के दरमियान है। और मैं उम्मीद करता हूं इसीलिए, यानी कि जो जुमले मैंने कहे हैं ये हकीकतन दरिया को कूजे में बंद करने वाली बातें, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं और गौर कर सकते हैं इन बातों पर। इंशाल्लाह ये जुमले जाया नहीं हो रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि फिर भूल जाएंगे। तो इस हस्ती को कुरान की जबान में एक नाम तो मैंने आपको बताया कि ये हस्ती जो है जिसके मजाहिर अंबिया हैं, आइम्मा हैं, यानी इस विलायत, इस विलायत का जो एक पूरा निजाम है, जो विलायत हक का निजाम है, उस विलायत हक के मजाहिर हैं नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा और यूसुफ और याकूब और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा। ये उस विलायत का मजहर है, वो विलायत अपने आप को इन इन सूरतों में मैनिफेस्ट करती है, जाहिर करती है। और हमें مواقع فراہم ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کہ ہم اس حبل اللہ کو تھامیں اور اوپر جائیں. تو اس کو قرآن کی زبان میں ایک اور بھی نام دیا گیا ہے, اور وہ نام کیا ہے؟ عبدی. عبدی کا مطلب کیا ہے؟ میرا بندہ. یعنی ولی یہ حق جو ہے وہ کون ہے جسے خدا کہتا ہے کہ یہ میرا عبد ہے. جو ابھی کل میں ایک محترم برادر سے بات کر رہا تھا کہ انسان کا کمال کیا ہے, جو سورہ والفجر کی آیت میں ہے, آخری آیت میں, فادخلی فی عبادی, داخل ہو جا میرے بندوں میں. انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. انسان کا کمال یہ ہے کہ خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. تو فادخلی فی عبادی, اور اسی کو جب آپ اس سے دیکھیں کہ معراج میں جو آیات معراج ہیں قرآن کریم میں, وہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے نبی کو یا رسول کو یا کسی امام کو معراج پر لے گیا. خدا نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ اس نے سیر کرائی, اس نے سیر کرائی, وہ لے کے گیا اپنے عبد کو. تو اس ولایت حق اور اس ولی اللہ الاعظم کو قرآن کی زبان میں یا حبل اللہ کہا جاتا ہے یا عبدی عبادی, یہ ولایت. اور عرفا اس انسان کو کہتے ہیں انسان کامل. لیکن انسان کامل کا جو کی جو اصطلاح ہے یہ عرفا میں بہت مشہور ہے, اور عرفا کے ذریعے سے ہی یہ لفظ ہمارے بھی کانوں میں بہت زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں انسان کامل کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں, یہ اصطلاح قرآنی نہیں. قرآن نے اس کو اسی طریقے سے پہچانوایا ہے کہ یہ حبل اللہ المتین ہے, خدا کی رسی ہے جو انسانوں کے لیے لٹکائی گئی ہے, نہ کہ ڈالی گئی ہے, کیونکہ اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے. اور اس کو اگر دیکھنا ہے انسانی شکل میں, کیونکہ اس ولایت کا انسانی صورت میں ہونا لازمی ہے, ورنہ ہم کنیکٹ نہیں ہو سکتے. اگر یہ ولایت خالی اپنی اس نورانی شکل میں ہو تو پھر ہمارے لیے کنیکشن پاسبل نہیں ہے. جیسے اس پہلی بات کو یاد رکھیے گا کہ جو ہستی ہمارے ان مسائل کو حل کر رہی ہے کہ جو ہمیں اپنے اور خدا کے درمیان گیپ لگ رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف سے وہ الہی ہو, ایسی الہی ہو کہ خدا کی محبوب ہو, اور دوسری طرف سے وہ اتنی انسانی ہو کہ ہمارے لیے 100% لائق اعتماد ہو اور لائق بھروسہ ہو. اسی لیے نبی علیہ السلام نے جو اپنے جن صفات کو سب سے پہلے منوایا تھا اعلان نبوت سے پہلے, وہ یہی تھی, صداقت اور امانت والی صفات. تو یہ ہے وہ انسان کامل, یہ انسان کامل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انسان کامل یا یہ حبل اللہ ہمارے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ میں تین باتیں ان کی جو مین کیریکٹرسٹکس ہیں وہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد پھر نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کے کچھ جملے آپ کو سنا دوں اور بات ختم ہو جائے انشاءاللہ ہماری. سب سے پہلی بات جو ولایت کی خصوصیت ہے ہمارے لیے, اب ہم ولایت کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا نے اگرچہ کہ ہم خدا کا شعور رکھنے کے بعد جب ہماری پیاس بڑھتی جا رہی تھی کہ ہم اس سے رابطہ کیسے پیدا کریں, تو خدا نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا ولایت کی شکل میں, حبل اللہ کی شکل میں. خدا نے اپنی رسی لٹکا دی کہ اس کو تھامو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. اور یا بات پھر بات سے بات نکلتی جائے گی, لیکن پھر اس ایک جملے کو بھی یاد رکھیے گا کہ اس حبل اللہ اور اس نظام ولایت میں قرآن کریم بھی ساتھ موجود ہے. تو اس میں یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے قرآن کریم اور وہ الگ, وہ والے معاملات نہیں. लेकिन ये हब्लुल्ला। तो सबसे पहला काम जो हमारा है इस विलायत के हवाले से कि हम विलायत में अपने रोल मॉडल को करार दें, यानी हम अपना रोल मॉडल कहाँ पे रखें, विलायत में रखें। अब जिस भी इंसान को खुदा ने जिस दौर में भी लोगों के सामने उस विलायत के नमूने के तौर पे रखा है, एक जमाना था कि इस विलायत का मजहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, कभी उनके औलाद जिनको खुदा ने उनको भी आइम्मा कहा है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, औलाद इब्राहिम को खुदा ने आइम्मा कहा है कि उनको हमने आइम्मा करार दिया कि जो हमारे अमर के साथ हिदायत करते थे, कभी वो मूसा थे कभी वो ईसा थे। जिस जमाने में हम पाए जाते हैं उस जमाने में कौन है, रसूल खुदा है, और रसूल खुदा के साथ वो हस्तियां हैं कि जो कुरान की नस की बिना पर नफ्स रसूल है। और इस एक बात को याद रखिएगा कि जो फजाइल हमें जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलते हैं कि आप नफ्स रसूल हैं, आप वसी पैगंबर हैं, आपकी जात गिरामी पर दीन कामिल हुआ, नेमतें तमाम हुई, तो ये फिर उस बात को याद रखिएगा कि ये फकत जात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बात नहीं है, तमाम हस्तियां जो मासूमीन हैं जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा समेत वो इसी मेयार पर मौजूद हैं। इस बात को जहन में रखिएगा, ये नहीं है कि ये खाली ये जनाब ये जो नफ्स रसूल वाली बात है तो ये खाली इमाम अली है, या वसी पैगंबर वाली बात है तो फकत इमाम अली हैं या और दीगर फजाइल। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये हस्तियां ये विलायत में रोल मॉडल हमको अपना करार देना है। रोल मॉडल किस काम आता है, रोल मॉडल इस काम आता है कि आप हमेशा अपने आप को उससे कंपेयर करते रहते हैं, जिसको भी आप अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या बाज़ औक़ात एंटरटेनमेंट वगैरह के हवाले से किसी को अपना एक हीरो करार देते हैं। तो हीरो करार देने का मतलब क्या होता है कि हम खुद ब खुद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस तरफ हरकत करना शुरू हो जाते हैं कि हम भी वैसे ही बने, हमारे अंदर भी वही सिफात पैदा हों जो उसमें है। तो विलायत क्या है, यानी जो हस्ती भी आपके सामने विलायत के नुमाइंदे के तौर पर मौजूद है, सबसे पहला विलायत, अगर ये नहीं है तो फिर विलायत कोई नहीं मान रहे हैं। फिर इस बात को जहन में रखें कि अगर ये सब नहीं है तो फिर विलायत का मानना कुछ भी नहीं। सबसे पहला रोल विलायत का और फायदा विलायत का ये है कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है, यानी हमें अपने आप को, और अपने आप का मतलब सिर्फ अपने आमाल को नहीं, अपने पूरे किरदार को, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपने रुझानात को, एस्पिरेशंस को, मोटिवेशंस को, इन तमाम चीजों को मुसलसल कंपेयर करते रहना है कि जो चीजें वली वली ये खुदा वलीउल्लाह के अंदर पाई जाती हैं, मैं उससे कितना नजदीक हूं, क्योंकि क्योंकि वलीउल्लाह बिला फसल खुदा की मर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यही बात चाही थी ना कि मुझे खुदा मिल जाए, मुझे पता चल जाए कि मेरा खुदा क्या चाहता है, मेरा खुदा मुझे कब महबूब रखेगा, मेरा खुदा मुझे कब चाहेगा। खुदा ने बता दिया, एक ऐसी शक्ल में हमको बता दिया कि जो हम आसानी से देख भी सकते हैं, जिसको समझ भी सकते हैं, जिसको दर्क भी कर सकते हैं, जिसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये पहली पहली जिम्मेदारी है विलायत के हवाले से, पहला फरीजा है विलायत के हवाले से, रोल मॉडल। दूसरा फरीजा क्या है कि हमें ये बात समझ में आए के वली ये खुदा, अब वली ये खुदा की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये नॉर्मल वली के सेंस में बात नहीं कर रहा जिस सेंस में हम वली की बात करते हैं, बल्कि वली आपके जहन में रहना चाहिए कि ये वो कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये कनेक्शन अपने आप को नबुव्वत और रिसालत और इमामत के जरिए से जाहिर करता है। तो दूसरी खसूसियत क्या है कि मैं ये पूछ रहा था अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, क्या आपकी तरफ आने के लिए मुझे कोई रास्ता तय करना पड़ेगा, या फकत कुछ काम कर लूंगा, या बैठे बैठे ही कोई जैसे सैटेलाइट के जरिए से कोई लिंक आपसे कायम हो जाएगा। खुदा हमको क्या बताते हैं, सूरह हम्द के जरिए से, एहदेना सिरातल मुस्तकीम। और ये जब हम पूछते हैं खुदा से कि ये सिरात मुस्तकीम क्या है जिसकी हिदायत के बारे में आपने हमसे कहा है कि मांगो मुझसे, तो खुदा क्या जवाब देता है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ये सिरात वो लोग हैं जो मेरे इनाम याफ्ता हैं। और जब मैं पूछता हूं कि ऐ अल्लाह आपके इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, तो सूरह निसा की आयत 69 हमको बताती है कि वो कौन लोग हैं, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये हस्तियां हैं, और ये इन हस्तियों यानी अम्बिया सिद्दीकीन शुहदा सालेहीन, इनके भी आला तरीन मिसदाक इन्हीं में ही हैं, नबी और रसूल और इमाम में ही हैं। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम सिद्दीक अकबर हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश शुहदा हैं, ठीक है, उसमें भी यानी सिद्दीकीन और शुहदा और सालेहीन भी इन्हीं में ही हैं जो हाईएस्ट लेवल के। तो दूसरी बात कि हमें ये समझ में आ गई कि यही सिरात भी हैं, यानी इन्हीं की राह को चलना, इन्हीं की राह को तय करना पड़ेगा, और इन्हीं के जरिए से फिर मुझे समझ में आता चला जाएगा, और इन्हीं की रहबरी और रहनुमाई में मुझे समझ में आता चला जाएगा कि कौन से अखलाक हसन हैं, कौन से रवैये कबी हैं, कौन से आमाल साले हैं, कौन से आमाल बदबख्ती में मुबतला करने वाले, हर चीज खुलती चली जाएगी। तो ये पूरा है विलायत का बैकग्राउंड, और विलायत की इम्पोर्टेंस, विलायत की सिग्निफिकेंस, और विलायत के हवाले से हमारी जिम्मेदारियां या वो एक्सपेक्टेशंस कि जब खुदा ने हमको विलायत की नेमत अता की तो उसके बिलमुकाबिल उसके बारे में खुदा हमसे क्या चाहता है। क्योंकि जब भी आप किसी को कोई नेमत अता करते हैं तो आपकी तवक्कुआत होती है उससे। आप कभी भी अगर कोई चीज किसी को गिफ्ट करते हैं, अता करते हैं, तो आप एक तवक्कु रखते हैं कि ये आपकी दी हुई नेमत को एक मखसूस तरीके से इस्तेमाल करेगा, और अगर वो उस तवक्कुआत पर पूरा उतरता है तो आप खुश होते हैं, आप कहते हैं कि ये एक इंसान यानी वाकया इसने मेरी नेमत की कदर की, वरना आप कहेंगे कि इसने मेरी नेमत को जाया और बर्बाद किया जो मैंने इसको दिया था। ये विलायत। अब मैं, अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं चंद मकामात से नहजुल बलागा से आपके लिए कुछ पढ़ देता हूं, आपको सुना देता हूं, कि क्योंकि नहजुल बलागा में रसूल पाक के बारे में बयानात बहुत हैं। आप अगर नहजुल बलागा को देखें और मुतालिया करेंगे ना, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक की सिफात और आपकी तारीफें और आपकी नात और आपकी सिफात को बयान किया है, और बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया है। जैसे कि आपने, आपके बेमिसल जुमले तौहीद के हवाले से हैं, ऐसे ही आपके मारिकतुल आरा बयानात पैगम्बर अकरम के हवाले से भी। तो थोड़ा सा इसमें मेरे साथ रहें कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शजरे से खुदा ने अम्बिया को पैदा किया, वंतखबा मिन्हा, और जिस शजरे में से, जिस शजर यानी दरख्त में से, जिस शजरे तैयबा में से खुदा ने अपने अम्बिया को मुंतखब फरमाया अपनी वही के अमानतदार के तौर पर, वही शजर वही कबीला बेहतरीन कबीला है, और उसमें से खुदा ने अपने आखिरी पैगंबर को उसी शजरे में से उनका इंतखाब किया, یہ وہ درخت ہے کہ جو سرزمین حرم میں اگا اور کرامت کے سائے میں پروان چڑھا. اب یہ جملے, ایک ایک جملہ بہت خوبصورت اور بہت تشریح طلب, لیکن ظاہر ہے اب وہ وقت نہیں ہے کہ ایک یہ درخت حرم میں, یعنی وہ سرزمین مکے کی سرزمین ظاہرا جسے خدا نے محترم قرار دیا, پوری اس پوری ارتھ میں خدا نے اس سرزمین کے سوا بائی ڈگری بائی لا اور کسی زمین کو حرام نہیں قرار, انہیں حرام یعنی محترم نہیں قرار دیا. تو اسی سرزمین میں رسول پاک کی ولادت ہے کہ اس سرزمین میں وہ شجر اگا اور کرامت کے سائے میں پروان چڑھا, اس کی شاخیں دراز ہیں, لہا فروع طوال, اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں, یعنی گھنا سایہ دار درخت ہے پھیلی ہوئی شاخوں کا. وثمرۃ لا نعال, اور اس کے جو پھل ہیں وہ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک اس پر ہاتھ ڈال لے. یہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کے جو نبوت کے پھل ہیں ان پھلوں سے استفادہ کرنے کے لیے بندے کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے. یہ وہ پھل نہیں ہے جو زمین پہ بکھرا دیے گئے ہیں کہ ہر ایک اٹھا لے, یہ کرامت کے پھل ہیں, یہ کرامت کے درخت سے اترے ہوئے پھل ہیں. فہوا امام و من اتقا و بصیرت و من اہتدا. رسول پاک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ رسول وہ امام ہے جو صاحب تقویٰ ہے اس کا, اور جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کی بصیرت ہے. اس جملے کو آپ غور فرمائیں, رسول اس کی بصیرت ہے یعنی وہ رسول کے نور سے دیکھتا ہے جو ہدایت یافتہ انسان ہے اور جو متقی ہے. سراجن لمع ضوءه, وہ چراغ ہے, روشن چراغ ہے کہ جس کی شعائیں دور دور تک پھیلتی ہیں, اور ایک ایسا ستارہ ہے کہ جس سے نور ساتے ہوتا ہے. یہ رسول پاک کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو دونوں باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جو وہی انبیاء کا شجر ہے, اسی میں سے انتخاب ہے, حرم میں اگا ہے, کرامت کے سائے میں پروان چڑھا ہے, اور اس سے ہمیں رسول خدا کی پرورش کرنے والوں کی بھی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جو آغوش آمنہ تھی یا عبد المطلب اور ابو طالب کا سایہ تھا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا گھر تھا, تو یہ دار کرامت ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہستی ہے یہ کرامت کے سائے میں پروان چڑھی ہے, اس سرزمین سے اس کی نمو ہے کہ جو سرزمین خدا کی نظر میں, خدا کی نگاہ میں محترم ہے. تو یہ پہلو انسانی, اور بعد میں جو آپ نے بیان کرنا شروع کیا فضیلت رسول پاک کے, ہر ہدایت حاصل کرنے والے کا نور, وہ چراغ کے جس نے مطلب دنیا کو انسانیت کو روشن کیا, ایک ایسا روشن ستارہ کہ جس کا نور ہر اندھیرے اور تاریکی کو روشن کر دیتا ہے, یہ خدائی پہلو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ولی حق ہے, جو ولایت کا نمائندہ ہے, وہ یہ دونوں کنیکشنز پرفیکٹ رکھتا ہے. یعنی خدا کی بارگاہ میں جو اس کا کنیکشن ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے, اور انسانوں کے ساتھ بھی جو کنیکشن ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے, کہ یہاں بھی کرامت ہے, شرافت ہے, حرمت ہے انسانی پہلو سے, اور وہاں نورانیت ہے, عظمت ہے, ہدایت ہے, بصیرت. اس کے بعد ایک کچھ جملے وہ سن لیں جو مجھے بہت زیادہ, اگر شاید میں کہوں کہ میرے جو موسٹ فیورٹ, مجھے تو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں, جو امام علی علیہ السلام کی نعت رسول خدا کے حوالے سے, وہ چند جملے میں آپ کو سنا دوں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں رسول کے بارے میں کہ طبیب دوار بطبہ, رسول خدا کون ہے. اور یہ یعنی ہمارے لیے حقیقتاً ڈوب مرنے کا مقام ہے ان جملوں کو سننے کے بعد. طبیبن, وہ کون ہے؟ وہ طبیب ہے, معالج ہے, ڈاکٹر ہے. کس قسم کا ڈاکٹر ہے؟ جو اپنی کلینک میں بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرے پاس مریض آئیں گے تو علاج کروں گا. دوارن, جو مسلسل حرکت میں دورے پر ہے, جو مسلسل دورے پر ہے, بطب بے ہی اپنی دواؤں کے ساتھ. یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے کہ جو ایک جگہ پر بیٹھ کر مریض کا انتظار کرتا ہے, بلکہ یہ وہ ڈاکٹر ہے, یہ وہ طبیب ہے جو اپنی دواؤں کو لے کر مریض کی تلاش میں گھوم رہا ہے. دوارن بطب بے ہی قد احکم مراحمہ, اس نے اپنے جتنے بھی مرہم ہیں, آئنٹمنٹس ہیں, ان کو خوب اچھے طریقے سے بنا لیا ہے. کیونکہ مرہم اور آئنٹمنٹ آپ کو پتا ہے کہ بنانے پڑتے ہیں. محکم کر لیا ہے اپنے مراحم کو, اپنے مرہموں کو. وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ, اور اپنی سرجری کے جو آلات ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے سیٹ کر لیا ہے. یعنی اگر اس کو اس کے لٹرل میننگ میں میں جاؤں تو ان کو اچھے طریقے سے یعنی تپا لیا ہے. تپانے کے, کیونکہ اس زمانے میں جو سرجری ہوتی تھی اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو بھی آلات جراحی ہوتے تھے اس کو پہلے گرم کیا جاتا تھا تاکہ اس میں سے جراثیم وغیرہ ختم ہو جائیں اور پھر آپریشن ہوتا. اس نے آلات جراحی کو بھی سیٹ کر لیا ہے, جہاں کسی کو جراحی کی ضرورت ہوگی سرجری کو وہاں وہ کام کرے گا, جہاں کسی کو مرہم لگانے کی ضرورت ہوگی اس کو مرہم لگائے گا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یضع من ذلك حیث الحاجۃ الیہ من قلوب عمی, وہ ان سب کو لے کر گھوم رہا ہے. اس کے پاس جراحی کے بھی آلات ہیں, اس کے پاس مرہم بھی ہیں, اس کے پاس میڈیسن بھی ہے, سب کو لے کر گھوم رہا ہے. کس کے لیے گھوم رہا ہے؟ قلوب عمی, ان دلوں کے تلاش میں کہ جو اندھے ہو چکے ہیں. وآذان صم, ان کانوں کی تلاش میں کہ جو بہرے ہو گئے. وَأَلْسِنَةٍ بُكْمٍ, اور وہ زبانیں جو گونگی ہو چکی ہیں. اب آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ گونگی زبانیں اور بہرے کان اور اندھے قلوب کون ہیں. یہ وہی ہیں کہ جو ابھی اپنے نفس کی معرفت سے بھی غافل ہیں, جو میں نے خطبہ 220 آپ کو پڑھ کے سنایا تھا, کہ جو یہ وہ نفوس ہیں کہ جو غفلت و جہالت کی وادیوں میں پڑے ہوئے, گہرائیوں میں گرے ہوئے. اندھے دل, بہرے کان, گونگی زبانیں. متتبع بدواعہ مواضع الغفلت و مواطن الحیرت, وہ اپنی دواؤں کو لے کر پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے کہ جو غفلت کے مواضع میں پڑے ہوئے ہیں, جو حیرت کے وطن میں گھوم رہے ہیں. لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ لم يستضيعوا بأضواء الحكمة, اس کی حکمت کی روشنی سے نور حاصل نہیں کرتے, اپنے آپ کو روشن نہیں کرتے. جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ولایت کے حوالے سے ہماری بھی ذمہ داری ہے, ولایت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں رول ماڈل قرار دیں, ہم ان کی صراط کو طے کریں. خالی ولایت کے بارے میں قصیدے پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, اس صراط کو طے کرنا پڑے گا. اس کی روشنی سے نہ نور حاصل کیا. اور ایک جملہ بس, کہ ولم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبہ. بھی عجیب اصطلاح امام علی علیہ السلام نے استعمال کی. زناد کہتے ہیں کہ جو چقماق کا پتھر ہوتا ہے. چقماق کا پتھر آپ کو پتا ہے کہ جو دو پتھر اگر مارے جائیں تو ان میں سے, ان پتھروں میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسول کے پاس جو علوم ہے نا, علوم ثاقبہ، یہ چقماق کے پتھر کی مانند ہے. ان پتھروں کو آپس میں لو، اس میں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو چنگاریاں نکلتی تھیں اس سے لوگ آگ روشن کرتے تھے، یہ اس کے چقماق کے پتھروں سے آگ روشن نہیں کرتے. فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ وَالصُّخُورِ الْقَاسِيَةِ. تو اس طبیب دوار کے رسپانس میں لوگ کیا ہیں؟ چرنے والے چوپائیں ہیں اور سخت پتھروں کے جیسے ان کے دل ہیں. سخت پتھروں کے معنی ان کے وجود ہیں. صخور یعنی جو راک ہوتی ہے، راک. صخور القاسیہ، ہارڈ راک. دے آر لائک ہارڈ راک، یا انعام السائمہ، یا چرنے والے چوپائے. تو ہم کافی حد تک پہنچ گئے اصول دین کے حوالے سے. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مجالس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ تفصیل اور تفسیر اور تشریح کی جا سکے بہت زیادہ. مجالس کا جو فارمیٹ اور فورم ہوتا ہے وہ متوجہ کرانے کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر آپ دلچسپی آپ کو حاصل ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، تو آپ اس لیڈ کو لیتے ہوئے آگے کنٹینیو کریں اور ڈیولپ کریں پھر ان باتوں کو. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے امام علی علیہ السلام کے بیانات نورانی سے استفادہ کرتے ہوئے اصول دین کی بات کی، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ فاؤنڈیشن کیا ہے. وہ فاؤنڈیشن نمبر ون، معرفت نفس، توحید اور ولایت. اور جب ان تینوں کا ایک کمبینیشن بنے گا، اور جیسا کہ آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ میں آپ کو اصول اور فروع کے حوالے سے جو مثال دے رہا ہوں، میں نے بلڈنگ کی تو دی ہے لیکن اصل مثال جو میں نے آپ کو دی تھی وہ درخت کی دی تھی، کہ جب جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر باقی سب کچھ خود بخود اس میں سے برآمد ہوتا ہے. پھر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، پھر اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے، پھر وہ تمام کی تمام چیزیں، اعمال صالحہ، نیکی، اچھائی، اخلاق حسنہ، خوبی، وہ سب کا سب جو مختلف پھل ہیں انسانی پاکیزہ صفات کے، وہ تمام کے تمام نمودار ہوتے چلے جائیں گے. ایک صلوات محمد و آل محمد. اللہم آج جس شب میں ہم ہیں، اور تاریخ ہماری آپ کی ایک ہی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اور آپ کا جو سن ولادت ہے 38 ہجری 15 جمادی الاول، اور آپ کے یوم شہادت جو زیادہ یعنی مشہور ہے کیونکہ مختلف روایتیں ہیں، تو اس میں زیادہ مشہور ہے 25 محرم 95 ہجری. تو اس اعتبار سے آپ کی اور امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک ایک ہے، یعنی 57 برس. اور ولید ابن عبد الملک بن مروان، جو کہ سخت دشمنان اہل بیت میں سے تھا، خاندان ابو سفیان ہو یا خاندان مروان، اولاد مروان ہو، اسی کے زمانے میں، اسی کے دور حکومت میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. اور اگر ہم امام علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو شاید اتنا زیادہ جتنا پر آشوب دور آپ کی امامت کا، آپ کی حیات طیبہ کا گزرا ہے، وہ شاید کسی بھی امام کی زندگی کا نہ ہو. کیونکہ 38 ہجری سے اس وقت 2 سال کے بعد امام علی علیہ السلام کی شہادت ہے، بنو امیہ کا ایک فریب دہی کے ساتھ حکومت پر قابو پانا ہے، اور سب سے بڑا سانحہ جسے آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا وہ خود واقعہ کربلا ہے، اس کے بعد سفر ہے. اور करबला से वापसी के बाद भी ऐसा नहीं था कि आपके लिए कोई आसान मामला था, बल्कि वहां भी जो वाकये 2 साल के बाद वाकये हर्रा पेश आता है, जिसमें यानी मदीने की ताराजी है, आपके इल्म में होगा कि वाकये हर्रा में मदीने के साथ क्या सलूक किया गया। फिर उसके बाद मोमिनीन पर जुल्म व सितम का, यानी शिया ने अली पर जो जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू हुआ हज्जाज बिन यूसुफ के जरिए से, जो 20 साल तक जारी रहा, यानी इमाम अलैहिस्सलाम की तकरीबन शहादत तक वो सिलसिला जारी रहा। तो ये सब के सब मसाएब व आलाम अजीम है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में देखे, और उनके मुकाबले में आपने जो किरदार पेश किया है वो किरदार भी बहुत ज्यादा लायक तवज्जो है, कि उस किरदार में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर था वो खुदा की बंदगी पर था, खुदा से ताल्लुक पे था। और इसी हवाले से आपके अलकाबात जो मशहूर हुए वो ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन के हवाले से मशहूर हुए, कि आपने अपने किरदार में सबसे ज्यादा जिस चीज की तरफ उम्मत मुस्लिमा को मुतवज्जे कराने की कोशिश की कि तुमने इस असल को छोड़ दिया है, इस असल को तर्क कर दिया है, और जब तक तुम इसकी तरफ नहीं लौटोगे तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं एक छोटा सा वाकया के इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि जो आपके किरदार को उजागर करता है, और जिसमें एक बड़ा अजीब, मुझे ये वाकया बहुत फैसिनेटिंग लगा था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे भी इसको बयान करूं, कि एक जो रावी है ताबितुल बनानी उसका नाम है, इसमें सन नहीं लिखा हुआ, इस वाकये को किताब एहतजाज तबरसी में बयान किया गया है, और जहां से अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार की जिल्द 46 में इसको नकल किया है, कि वो ये बयान करता है कि हम लोग 5-6 आदमियों के उसने नाम लिए, कि ये अपने जमाने के बड़े आबिद और जाहिद लोग मशहूर थे, और उबाद बसरा यानी बसरे में बड़े ये आबिद और जाहिद लोग थे। ये कहते हैं कि हम लोग मक्के में दाखिल हुए हज की नीयत से, हज के जमाने में। जब हम मक्के में दाखिल हुए तो वहां मक्के में पानी यानी काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, मक्का एक बड़ी सख्त जमीन है, जरखेज जमीन नहीं है, तो वहां पर खुश्क साली थी, पानी की कमी से लोग तड़प रहे थे। जब हमें देखा तो लोगों को पता था कि ये बड़े आबिद और जाहिद लोग हैं, तो हमसे फरमाइश की कि तुम दुआ करो खुदा की बारगाह में कि खुदा हम पर पानी बरसाए, हमारे लिए पानी की किल्लत का मसला हल करे। वो ये कहता है कि हम सब लोगों ने काबे में गए, अब जो भी काबे का पर्दा था नहीं था वहां पे जाके दुआ की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई बारिश नहीं हुई, कोई दुआ का नतीजा बरामद नहीं हुआ। इतने में हम देखते हैं कि एक ऐसा नौजवान, और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से जितने भी वाकयात बयान किए गए हैं उसमें एक तो ये कि आपके जवानी के हवाले से गुफ्तगू है, कि ज्यादातर लोगों ने बयान किया कि हमने इस नौजवान को देखा, इस जवान को देखा, और दूसरा ये कि आपकी जवानी के आलम में आप पर वो आसार तारी थे कि जैसे एक शख्स जो बहुत गम अंदोह रंज, एक ऐसी हालत के जिसमें मुशक्कत भी हो, मेहनत भी हो, दिक्कत भी हो, एक ऐसे जवान के तौर पर लोग आपको देखते थे, ना कि वो जो जवानों की उमूमी कैफियत होती है हशाश बशाश वाली। तो एक ऐसे जवान को हमने देखा कि जो इस कैफियत में काबे का तवाफ कर रहा था, और उसने फिर इनको बुला के पूछा, एक एक का नाम लिया, बुलाया और उनसे पूछा क्या है, क्या मामला है। उन्होंने कहा कि हम ने दुआ की बारिश के लिए, बारिश नहीं हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिससे खुदा मोहब्बत करता हो, तुम में से ऐसा कोई नहीं है जिससे खुदा मोहब्बत करता हो। उन लोगों ने कहा कि ऐ जवान, दुआ हमारी तरफ से, कबूलियत खुदा की तरफ से। हमने दुआ की, कबूल करने वाला वो है। आपने फरमाया नहीं, तुम में से कोई ऐसा नहीं है कि जिससे खुदा मोहब्बत करता हो और उस मोहब्बत की बिना पर तुम्हारी दुआ कबूल करे। आपने उनसे कहा तुम सब काबे से दूर हो जाओ, तुम सब काबे से अलग हट जाओ। सजदे में सर रखा, एक जुमला आपने फरमाया कि या सैयदी, ये उसके वर्ड है, या सैयदी यानी ऐ मेरे सरदार, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझसे है, इनको मूसलाधार बारिश से सैराब कर दे। ये इमाम अलैहिस्सलाम के जुमले हैं सजदे में। या सैयदी ऐ मेरे सरदार, बेहुब्बेका ली, उस मोहब्बत के वसीले से जो तुझे मुझसे है, सकई तो हम बिलगैफ, इनको मूसलाधार बारिश से सैराब कर दे। तो जो रावी है वो ये कहता है कि अभी ये अल्फाज मुकम्मल नहीं हुए थे कि हमें ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से किसी ने मशकीजे का मुंह खोल दिया हो, इस अंदाज से बारिश बरसना शुरू हुई। तो हम हैरान होकर उस जवान के पास पहुंचे और उससे कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें ये कैसे पता कि खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। अब ये एक जुमला ऐसा है कि जिसको आम मुफस्सरीन और मुतरजमीन देखेंगे तो किसी और नज़र से देखेंगे, अहले मारिफत देखेंगे तो किसी और नज़र से देखेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब उसने मुझे अपनी जियारत के लिए बुलाया है, जब उसने मुझे अपनी जियारत के लिए बुलाया है, तो ये इस बात का सबूत है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये अहले बैत है, ये अहले विलायत है, और इसी राह से हमें उनसे करीब होना है, इनसे मुतमस्सिक होना है। लेकिन जो सलूक इन हस्तियों के साथ हुआ और खास तौर से उन अय्याम में हुआ कि जिनकी याद हम हर साल मना रहे होते हैं, तो हमें ये बात पता है कि जब 10 मुहर्रम को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इज़्ने इलाही से उस हालत बीमारी में थे, तो उस आलमे मर्ज में इमाम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर खेमों को आग लगाई गई, और जब असबाब लूटा गया अहले हरम का, तो मलऊन व अशकिया इमाम अलैहिस्सलाम के नीचे से बिस्तर भी निकाल के ले गए। यानी कि उन्होंने ना बीबियों की चादरें छोड़ी और ना उस जवान बीमार का बिस्तर छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद वो जो रात थी, जो शायद सबसे कयामत की रात थी अहले हरम की तारीख में, आले रसूल की तारीख में, 11 मुहर्रम की, उस रात भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की तस्बीह व तहलील की आवाज़ें ही सहराए करबला से बुलंद होती रहीं। और फिर उसके बाद जनाब सैयदुश साजदीन नमालूम किस आलम में उस तौक और जंजीरों के साथ कूफे पहुंचे, कूफे से शाम वारिद हुए। इन मजलूमीन का काफिला कितने घंटों तक दमिश्क की जामे मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा रहा, कितनी देर तक दमिश्क के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद जब अहले हरम को उस मलऊन यजीद के सामने पेश किया गया, तो जो तारीख हमको बताती है कि 700 कुर्सियां मौजूद थीं दरबार में, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के उमरा, वज़रा, सुफरा सब बड़ा जमान थे, और उनके सामने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को इस हालत में लाया गया कि आपके दाएं बाएं और आपके पीछे रसूल अल्लाह की नवासियां बेपर्दा थीं, और उस लईन के सामने सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा हुआ था कि जिनके साथ वो अपने उसके हाथ में एक छड़ी थी, और वो आपके लबों और दंदाने मुबारक के साथ बेअदबी और गुस्ताखी कर रहा था। इस मंजर के बारे में रिवायत में ये मौजूद है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इस मंजर पर नजर पड़ी, आपने सबसे पहले अपनी फूफी को अपने पीछे कर लिया कि उनकी निगाह इस मंजर दर्दनाक पर ना पड़े, लेकिन खुद आपके चेहरे का रंग जर्द होना शुरू हो गया। खुद आप इस मंजर की ताब नहीं ला पा रहे थे। उसके बाद जब उस मलऊन यजीद ने कलाम करना शुरू किया, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जिस शुजाअत, जिस शहामत, जिस अजामत के साथ उसका जवाब देना शुरू हुआ, तो चंद लम्हों में ऐसा लगने लगा कि उसकी पूरी बिछाई हुई बिसात उलट रही है। इस मौके पर अब यजीद को निकल भागने का कोई मौका नजर नहीं आ रहा था कि उसने मुअज्जिन से कहा बेवक्त कि अजान का वक्त हो गया है, जा और अजान दे। इमाम अलैहिस्सलाम अजान के एहतराम में खामोश होते हैं। मुअज्जिन अजान देना शुरू करता है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचता है, तो इमाम अलैहिस्सलाम उस जलालत के आलम में उसको कहते हैं, ए अजान देने वाले, खामोशी इख्तियार कर। वो इमाम के रोब में खामोश होता है, तो आप यजीद की तरफ रुख करके पूछते हैं कि ए यजीद, बता कि जिस मोहम्मद और रसूलुल्लाह की रिसालत और नबुवत का ऐलान हो रहा है इस अजान मुस्लिमीन में, वो तेरे जद थे या मेरे जद थे? और फिर आपने वहां पर वो मारे का तुलारा खुतबा दिया कि मैं जमजमो सफा का फर्जन हूँ, मैं मक्का व मीना का फर्जन हूँ, मैं फर्जंदे बत्था हूँ। और कुछ ही देर में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबात की बरकत से, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कलेमात की बरकत से उसकी पूरी बिछाई हुई बिसात उलट चुकी थी। ये कारे इमामत था, इमाम की शुजाअत थी। लेकिन जब सैयद साजिदीन इस काफिले के साथ वापस मदीने पहुंचते हैं और मदीने में रिहाइश अख्तियार करते हैं, तो वहाँ आपके फराइज में से एक फरीजा ये भी था कि जो लोग भी आते थे उनके सामने अपने मजलूम बाबा का, भाई का, असहाब का जिक्र फरमाते थे, गिरिया करते थे। जब कभी किसी कसाब की दुकान पे जाते थे तो पूछते थे कि ए बरादर, तूने इस जानवर को ज़बह करने से पहले पानी तो यकीनन पिलाया होगा, तूने इस बात का तो ख्याल रखा होगा कि एक जानवर को दूसरे जानवर के आगे ज़बह ना किया जाए, उसकी नजरों से दूर रख के ज़बह किया जाए। तो वो जब ये कहता था कि हाँ फरजंद रसूल, मैं इन तमाम बातों का ख्याल रखता हूँ, तब आप एक आह भर के कहते थे कि आह मेरा बाबा, आह मेरे खानदान के वो अफराद, आह मेरा बाबा कि जिसने एक दिन में 72 लाशें उठाए, जिसकी निगाहों के सामने उसके कड़ियल जवान को शहीद किया गया। और कभी जब लोग इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते थे कि ऐ फर्जंदे रसूल, अब्बस, अब आपने बहुत गिरिया कर लिया, तो इमाम फरमाते थे कि ऐ सवाल करने वाले, ऐ मुतालबा करने वाले, तूने मेरे हक में इंसाफ नहीं किया। याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 में से एक यूसुफ गुम हो गया था, तो याकूब ने उसके लिए उसकी याद में रोते रोते अपनी आंखें सफेद कर ली, और मेरे सामने तो एक दिन में 18 यूसुफ तहे तहे हो गए, मैं कैसे उनके लिए गिरिए को तर्क कर सकता। लानतुल्लाह, रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना व अंसुरना अलल क़ौम अल काफ़िरीन। मातम हुसैन, नैय्यर साहब, अरशद मातम के हवाले से कुछ।